તારીખ 10/7/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 199 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 145
પેજ 130 199 પ્રશ્ન કલ થોડા ચલા હૈ તો ફિર સે લેંગે થોડા પ્રશ્ન વો ક્યા હૈ કે કિસી જીવ કો 11 અંક કા જ્ઞાન હોતા હૈ ફિર ભી उनको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है, बुद्धि का क्षोभ बहुत है। 11 अंक तक ज्ञान करता है शास्त्र पढ़कर, और उसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है, तो उसका स्थूल उपयोग कहाँ है? स्थूल मैंने मोटी बुद्धि, स्थूल उपयोग मैंने मोटी बुद्धि वाला बोला है। और जिसको बुद्धि तो ज्यादा नहीं है, परंतु जिसका उपयोग ने चैतन्य स्वभाव को ग्रहण कर लिया, उसको सूक्ष्म उपयोग कहा है, तो इसका क्या कारण है? मतलब वो है कि स्थूल उपयोग का स्वरूप क्या है, सूक्ष्म उपयोग का स्वरूप क्या है? उपयोग मैंने ज्ञान, उस पर एक विचार आया था
जी
कि आत्मा में सूक्ष्मत्व नाम का गुण है, इसलिए आत्मा बहुत सूक्ष्म स्वरूपी है। ज्ञान ज्ञान नाम का गुण से आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, दर्शन गुण से आत्मा दर्शन स्वरूप, वैसे ही सूक्ष्म गुण से आत्मा सूक्ष्म स्वरूपी है, स्वरूप से ही सूक्ष्म है, और सूक्ष्म ज्ञान ही उसको ग्रहण कर सकता है या पकड़ सकता है, स्थूल ज्ञान उसको ग्रहण कर सकता नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। अब परिस्थिति भी वो है कि जो जीव के परिणाम परद्रव्य के प्रति आकर्षित होते हैं, पंचेंद्रिय के विषय खास करके होते हैं, रूप रस गंध वर्ण शब्द, तो उसमें सुख बुद्धि के कारण से जीव के परिणाम लगते हैं, सुखाभास होता है, सुख का अभिप्राय है, परिणाम वहां दौड़ते हैं, लग जाते हैं, चाहे नहीं चाहे सुख बुद्धि है, परिणाम वहां ही लगेगा। परिस्थिति क्या होती है कि अपना परिणाम पर पदार्थ का सेवन करता है तो वो परिणाम में हानि होती है। किस प्रकार की हानि होती है? कि सुख की भी हानि होती है और ज्ञान की भी हानि होती है। जैसे पंचेंद्रिय में से 4 इंद्रिय हो जाएगा, कोई कोई 3 इंद्रिय वाला हो जाएगा, कोई 2 इंद्रिय वाला हो जाएगा, कोई 1 इंद्रिय भी हो जाएगा, तो ज्ञान की भी हानि हुई और सुख की भी हानि हुई। क्यों? कि अपने परिणाम है परद्रव्य में लगते रहे, इसलिए। अब सिद्धांत या विज्ञान ऐसा है कि जो परिणाम अपने में लगे तो उस ज्ञान और सुख बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ेगा? कि केवल ज्ञान हो जाएगा और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। अगर परिणाम अपने में लगा रहा है तो बात वो हुई कि परिणाम अपने में लगने से अपने को ज्ञान और सुख की प्राप्ति है, आता है ज्ञान और सुख भीतर में से, तो शक्ति रूप है तो उसका विकास होता है पर्याय में परिणाम में। अगर हमारे परिणाम परद्रव्य के प्रति लगते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं, उस पर आवरण आ जाता है और हानि को प्राप्त होता है। ये वस्तु स्थिति ऐसी है। तो कह रहा कि चैतन्य तत्व को ग्रहण नहीं किया, मैंने अपने में परिणाम नहीं लगाए हैं, इसलिए जो सूक्ष्म गुण था उसका विपरीत परिणाम स्थूलता में आया, तो सूक्ष्म स्थूल हो गया, जाड़ी बुद्धि हो गई। जैसे रास्ता में ये गौ गाय बैल खड़े जाते हैं, इतना ट्रैफिक है तो उनको वो ख्याल नहीं रहता है कि मेरे से कोई टक्कर लगाएगा, मुझे लग जाएगा, मुझे यहाँ नहीं बीच में नहीं खड़ा रहना चाहिए, मुझे रास्ते के बीच में नहीं रहना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, खड़ा रहना नहीं चाहिए, वो तो बैठ जाएगा, खड़ा रह जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो उसके अपने सुख दुख के विषय का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन में उसकी बुद्धि मोटी हो जाती है। तो पंचेंद्रिय है, संगनी पंचेंद्रिय मन वाला प्राणी है तो भी मनुष्य गति से छूटकर पशु पर्यंच गति में चला गया, पशु हो गया, तो उसकी बुद्धि मोटी हो जाएगी। फिर परद्रव्य का सेवन करने से चार इंद्रिय हो जाए, चौर इंद्रिय हो जाए, तीन इंद्रिय हो जाए, दो इंद्रिय हो जाए, एक इंद्रिय हो जाए, कुछ भी हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों ने ये कहा कि तुम अपने में उपयोग लगाओ, परिणाम अपने में लगाओ। ज्ञान है वो नेता है, ज्ञान अपने में लगता है तो सभी परिणाम अपने में लगने लग जाते हैं, क्योंकि सभी गुणों के परिणाम ज्ञान के पीछे पीछे चलते हैं। जैसे नेता के पीछे पीछे सब लोग चलते हैं
जी,
वैसे ज्ञान के पीछे पीछे सब परिणाम चलते हैं। इसलिए बात उपयोग से करते हैं, तो उपयोग अपने में नहीं लगाया इसलिए वो स्थूल है। यदि अपने चैतन्य तत्व को ग्रहण करे तो उपयोग सूक्ष्म है, या सूक्ष्म चैतन्य तत्व सूक्ष्म है उसको ग्रहण करने वाला उपयोग भी सूक्ष्म ही होता है। सूक्ष्म चीज सूक्ष्मता से ही ग्रहण की जाती है, जैसे हीरा है उसको पकड़ने के लिए समानी चाहिए, हिंदी में उसको क्या चमचिमटे बोलते हैं, पतला फाइन पॉइंटेड, और जो है उसको पकड़ने के लिए सांसी चाहिए, ठंडासी बोलते हैं
जी,
उसमें वो नहीं काम में आएंगे, और सर्प को पकड़ने के लिए बड़ा सांसा चाहिए, उसे हीरा नहीं पकड़ा जाता। तो सूक्ष्म चीज पकड़ने के लिए सूक्ष्म उपयोग चाहिए, सिद्धांत वो हो गया। ग्यारह अंक पढ़ने वालों ने उपयोग कहाँ लगाया, शास्त्र में लगाया। सिद्धांत क्या हुआ कि पंचेंद्रिय का जो विषय है वो तो पाप के परिणाम है, लेकिन शास्त्र में उपयोग लगाना वो कोई पाप के तो परिणाम नहीं है, फिर भी उसमें सामान्य बात कहाँ कहाँ रही कि जो पंचेंद्रिय के विषय है वो भी परद्रव्य है और शास्त्र भी परद्रव्य है। तो परद्रव्य के प्रति जो परिणाम चलता है उसकी दिशा पर सन्मुख रहती है, उसके भीतर में अंतर्मुख आत्मा में तो परिणाम रहेंगे नहीं। तो बिना समझे कोई ऐसा अभिप्राय रख करके कि जिन शास्त्र का हम खूब बहुत अध्ययन करें, 11 अंक तक करने
जी,
और परिणाम अंतर्मुख करने का कोई प्रयास या पुरुषार्थ नहीं चले तो उसका उपयोग स्थूल है। उसको आत्म सुख का लाभ नहीं मिला, आत्मिक सुख नहीं मिलेगा उसमें। प्रयोजन सुख का है, ज्ञान का नहीं है। प्रयोजन किसका है? सुख का है। कम जाने ज्यादा जाने इसका मतलब नहीं है। सुख होना कोई सभी जीव का प्रयोजन है और सारा उपदेश जो है और सिद्धांत है वो उसी को केंद्र स्थान में रख करके, सुख का मुद्दे को केंद्र स्थान में रख करके ही चला है। जो जीव इस सुख के प्रयोजन में पक्का है
जी,
क्या वो इस लाइन में बढ़िया से बढ़िया काम कर पाएगा। प्रयोजन का पक्का दृष्टिकोण वाला जीव का ये काम है। वो संसार में जाएगा तो भी अपने प्रयोजन के पीछे इतना लगेगा कि उसमें तरक्की करेगा, और तरक्की करके बाद में भले ही दुर्गति कुंड में चला जाए वो भी दूसरी बात हो गई, लेकिन वो उसके पीछे जाएगा। वही जीव
जी।
अगर प्रयोजन की दृष्टि वाला वही जीव परमार्थ के मार्ग में आ जाएगा बहुत बढ़िया काम कर जाएगा, बहुत बड़ा काम कर जाएगा। तो ये सुख का जो प्रयोजन है वो बात जिसको समझ में आती है तो इसके पीछे लग जाता है, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो। जैन धर्म में अजैन लोग क्यों आते हैं? कि जिसको ये बात समझ में आई कि जैन है कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय का विषय नहीं है, ये तो एक आत्मा जो जैन है सो जीन है सो आत्मा है, जैन मैंने आत्मा तो बनारसीदास जी ने गाया है
जी।
घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, सब में अंदर में तो सब जैन ही है, एक आत्मा ही है, अंदर में तो सब आत्मा ही है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के पान से मत वाला समझे न। जो मत मदिरा जिसने पिया कि ये मेरा संप्रदाय, ये मेरा संप्रदाय, ये मेरा संप्रदाय, वो बात ये नहीं समझ पाएगा। चाहे जैन होगा तो भी नहीं समझेगा, अजैन होगा तो भी नहीं समझेगा, क्योंकि वो मत में संप्रदाय के मत में आ गया। संप्रदाय बुद्धि वाला ये बात नहीं समझ सकेगा, क्योंकि तीर्थंकर देव सर्वज्ञ परमात्मा की दृष्टि वो है कि सबको एक जाति का देखते हैं, सभी आत्मा को एक जाति का देखते हैं। ये वितराग परमात्मा को ऐसा भी नहीं है कि ये मेरी भक्ति करने वाला है इसलिए मेरा भक्त है, और जो मेरी भक्ति नहीं करता है वो मेरा नहीं है, ऐसा मेरा तेरा वितरकता में नहीं होता
जी।
तो सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, और योग्यता है उन पर उनका विशेष रूप से भाव रहता है
जी।
योग्यता मैंने क्या, कि जो अपने आत्महित के कार्य में आगे बढ़ता है, बढ़ा है, उनको स्थान देते हैं। जैसे गौतम स्वामी ग्रामीण थे, जैन कुल में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन योग्यता थी तो उसको गणधर पद मिला। बाकी तो भगवान की समोसरण के सभा में बहुत से जैनी लोग थे, विद्वान थे, पंडित थे, समीर दृष्टि थे, और मुनि भी थे, आचार्य भी थे, किसी को गणधर पद नहीं मिला, तो ब्राह्मण को मिला
जी।
तो भगवान योग्यता को स्थान देते हैं, पर उसमें जैन अजैन ऐसा कुछ नहीं देखते, आत्मा ऐसा देखते हैं, वो भी एक आत्मा है, उसकी योग्यता अच्छी है उसको आगे बिठाओ, जिसकी योग्यता अच्छी है उसको आगे बिठाओ, ये बात है।
मिथ्या दृष्टि का उपयोग स्थूल है, संजय दृष्टि का निर्विकल्प आनंद का उपयोग और सविकल्प आनंद का उपयोग, क्या
उसमें बुद्धिपूर्वक का राग पैदा हो जाता है, तो उसमें फर्क वो है कि पुरुषार्थ की कमी हुई। सिद्धांत वैसा है कि तीव्र पुरुषार्थ से शुद्ध उपयोग और मंद पुरुषार्थ से शुभ उपयोग। शुभ उपयोग में कब आता है? शास्त्र, दया, दान, पूजा, भक्ति, पुरुषार्थ मंद होता है। तीव्र पुरुषार्थ होता है तो निर्विकल शुद्ध उपयोग ध्यान में उपयोग लग जाता है, वहां पुरुषार्थ की डिग्री की कमी बेसी समझ लेना है। हाँ, जितनी वितरागता है उतनी शुभ निद्रा है, क्योंकि सर्वथा वितरागता को छोड़ नहीं दिया, या परिणति वितरागता की जो साधक दशा है वो छूटी नहीं, वो चालू रही।
हाँ,
उपयोग चैतन्य को ग्रहण करता है वो सूक्ष्म है, उपयोग बाहर निकलता है वो स्थूल है, उसको
भी दो तरह के हो गए
ना, वो भी सूक्ष्म स्थूल का तो भेद रहना ही पड़ता है, क्योंकि विषय सूक्ष्म है तो उपयोग सूक्ष्म होगा, विषय सूक्ष्म है तो उपयोग सूक्ष्म रहेगा, विषय स्थूल है तो उपयोग स्थूल हो जाएगा। वो तो शुभ है, शुभ भाव है तो शुभ उपयोग कहेंगे, अशुभ भाव है तो उपयोग के साथ अशुभ भाव है तो अशुभ उपयोग कहेंगे, वो तो सम्यक दृष्टि को भी शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग दोनों होता है उनको, लेकिन वहाँ पुरुषार्थ मंद होता है, बाहर निकलता है कब, कि पुरुषार्थ मंद होता है तब। मुमुक्षु को तो परमार्थ हो लेना चाहिए कि हमको भी अंदर में उपयोग लगाना है, बाहर में शुभ में उपयोग लगाने से हमको कोई फायदा नहीं है,
वो तो बराबर, मगर मुमुक्षु का उपयोग तो स्थूल है, उसको शुभ उपयोग बोलेंगे क्या?
मुमुक्षु का उपयोग स्थूल है, शुभ भाव है तो शुभ उपयोग है, अशुभ भाव है तो अशुभ उपयोग है। जो भाव है वैसा ही बोला जाएगा, लेकिन उपयोग है परिणति उनकी, सम्यक दृष्टि की परिणति अलग है, मिथ्या दृष्टि की परिणति अलग है, सम्यक दृष्टि की मोक्ष परिणति है और मिथ्या दृष्टि की संसार परिणति है, फर्क वहाँ है, उपयोग तो दोनों का शुभ शुभ होता है, परिणति में फर्क है वहाँ। हाँ वो अलग बात है, वो जो बात है वो अलग बात होगी, कि पुण्य को जो पाप कहते हैं वो तो इसलिए कहते हैं कि मेरा उपयोग क्यों बाहर निकला, बाहर निकला तो मेरे सुख में आनी हुई, मेरी साधना में आनी हुई, तो जो हमको च्युत कराए, हमारी साधना से च्युत कराए, उनको ऐसा ही नाम दे देंगे, उनको नाम घटिया दे देंगे, ऐसी बात है। अशुभ से भी संसार होता है, शुभ से भी संसार होता है, तो दोनों का फल तो संसार हुआ ने, इसलिए उनको तात्विक दृष्टि से एक क्वालिटी में डाल देते हैं, क्योंकि इसका फल एक है, एक अधोगति है, एक देव मनुष्य की गति है, एक में तिरी नरक की गति है, लेकिन है दोनों संसार, तो संसार के कॉमन फैक्टर के हिसाब से उनको उनको भी पाप बोलने में आता है, अध्यात्म के प्रकरण में, तत्व ज्ञान के प्रकरण में ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो मालूम है कि दोनों में क्या फर्क है, वो मालूम है। ग्यारह अंग का ज्ञान किया, इसमें सब जाना, परंतु अंतर आत्मा को ग्रहण नहीं किया, इसलिए उपयोग स्थूल है। यहाँ तो कल्पन चलेगा। इसलिए शास्त्र ज्ञान में आगे बढ़ना वो जरूरी नहीं है
जी,
उपयोग को अंतर्मुख करना वो जरूरी है। बात क्या आई कि शास्त्र ज्ञान में आगे बढ़ना वो उतना जरूरी नहीं है जितना अंदर में उपयोग ले जाना जरूरी है, और शास्त्र ज्ञान भी उपयोग को अंदर में ले जाने के लिए है। शास्त्र पढ़ करके अगर हम उपयोग को अंदर नहीं ले जाते हैं तो हमने शास्त्र का की आज्ञा का स्वीकार नहीं किया। जो शास्त्र की आज्ञा है वो शास्त्र में भगवान की आज्ञा है, उसका स्वीकार हमने
नहीं किया
तो क्या फायदा? ऐसा शास्त्र पढ़ाई से क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो जो कहते हैं वैसा नहीं करते हैं
जी,
तो वो बात समझ में लिया, पढ़ा नहीं पढ़ा सब सर एक सा ही हो गया, क्या फर्क हुआ उसमें?
कुछ
नहीं। कुछ नहीं। हाँ उपेक्षा गया, आज्ञा की अवज्ञा किया, आज्ञा की अवज्ञा कर दी। बाह्य श्रुत ज्ञान में भले ही द्रव्य गुण पर्याय को जाना, सब जाना, सब कुछ जाना, परंतु मैं चैतन्य हूं ऐसा ग्रहण नहीं किया। वहां तो वो बात तुम अपने स्वरूप को ग्रहण करो ऐसी आज्ञा थी। क्या आज्ञा थी? तुम अपने स्वरूप को ग्रहण करो, शुद्ध चैतन्य एकम अहम अस्मि
जी।
समीसार में वो बात स्पष्ट है। आचार्य महाराज ने सीधी आज्ञा की है, सीधी आज्ञा की है डायरेक्ट कि तुम इस सिद्धांत का सेवन करो। सिद्धांत सेवितां, इस सिद्धांत का तुम सेवन करो। क्या सिद्धांत? कि अहम एक चैतन्यम अस्ति, मैं एक चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूँ, ऐसा ग्रहण करो, अपने आप में ऐसा ग्रहण करो। इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूँ, इसका मतलब कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं फलाना फलाना नहीं हूँ। वो बात इसमें है, अस्ति में नास्ति गर्भित है। तो मैं फलाना हूँ, मैं मनुष्य हूँ, वो जो ग्रहण किया है वो छोड़ना पड़ता है, तब आत्मा का ग्रहण होता है, करना नहीं हो रहा। ये पर्याय बुद्धि है
जी।
जिस कर्म जनित पर्याय से अवस्था चल रही है, मैं इतना ही हूँ, तो पर्याय बुद्धि हो गई। क्योंकि अगर मैं इतना ही होता तो हमेशा उतना ही रहता, लेकिन ये पहला ऐसा था नहीं, बाद में ऐसा रहने वाला भी
नहीं।
इस शरीर का संयोग हुआ है, शरीर का भी योग होगा, मैं आत्मा रूप रह जाऊंगा। तो मैं आत्मा हूँ ऐसा मैं ग्रहण नहीं करता हूँ, तो मेरे परिणाम उनके चलते हैं। अगर मैं आत्मा हूँ ऐसा ग्रहण करता हूँ तो मेरे परिणाम उनके चलते हैं। ये बात वह उपयोग स्वसम्मुख नहीं किया, इस उपयोग को स्वसम्मुख नहीं किया, और बाहर और बाहर ही रहा। क्या? बाहर और बाहर ही रहा, भले ही शास्त्र में रहा, इसलिए वो स्थूल है
जी।
कैसा है वो?
स्थूल है,
स्थूल है। और जो उपयोग चैतन्य को, चैतन्य मैंने स्वस्वरूप को ग्रहण करे, विचार करे नहीं,
ग्रहण करे,
ग्रहण करे, अनुभव करे, वही उपयोग सूक्ष्म है। अपने चैतन्य स्वरूप को चैतन्य स्वरूप से ग्रहण करना तो उपयोग स्थूल है, सूक्ष्म होगा, पर वो सही है, सम्यक है। चैतन्य स्वरूप को चैतन्य स्वरूप स्वरूप रूप अनुभव नहीं करते, मनुष्य के रूप में अनुभव करना, ये हमारा भी प्रयास है, ये भी प्रयास छुड़ाने के लिए। फिर क्या है कि मनुष्य के रूप में ग्रहण करके फिर मनुष्य के लायक हमारी क्या क्या कर्तव्य है वो बात आएगी कि गृहस्थी हमने हमको माना
जी,
तो गृहस्थी के लायक हमारे क्या कर्तव्य है वो बात आएगी। तो गृहस्थी के लायक हम जितने भी काम करेंगे इसके फल में हम दुर्गति में चले जाएंगे। अब ये मौका मिला है
जी
कि हम सही हमारे स्वरूप को समझे और हमारे परिणाम की दिशा बदले। अगर हम हमारे परिणाम को अंतर्मुख करते हैं तो हमारे पंचम गति होगी, निर्वाण पद की प्राप्ति होगी, वरना चार गति है। अब बात वो रही कि क्या इस परिस्थिति में ऐसा हो सकता है, क्या ये बात आती है। तो देखिए तो बहुत से ज्ञानी ऐसे हुए कि नहीं हुए, बहुत से ऐसे ज्ञानी हुए कि जो गृहस्थी थे बाहर में संसारी दिखते थे लेकिन आत्मकल्याण का, आत्मज्ञान का, आत्मध्यान का कार्य करते थे। हमारे प्रसिद्ध बहुत से ज्ञानी
जी,
जैसे गुजरात में हुए तो ये गुरुदेव हुए और श्रीमद राजचंद्र जी हुए और मैथिली हुए और हिंदी भाषा में लिए तो ये सोगानी जी हुए, श्री टोडरमल जी हुए, पंडित जयचंद्र जी हुए, बनारसी दास जी हुए, बुद्धिजन जी हुए, दौलत राम जी हुए, बहुत हुए, दीपचंद जी कासलीवाल हुए, तो ये सब गृहस्थी में हुए। उन्होंने ये काम का कार्य का प्रारंभ गृहस्थी में किया
जी।
अब वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, नींव का काम हो गया इधर, तो एक भव, दो भव, चार भव में वो अपना काम पूरा करके निर्वाण पद में
चले जाएंगे।
तो इस भूमिका में जो काम करने लायक है वो तो काम हम कर लें कम से कम, फिर आगे का काम तो बढ़ेगा बढ़ेगा और
बढ़ेगा
ही। क्यों कि इस भूमिका में जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो संसार की जड़ कट जाती है। क्या होता है, संसार की जड़ कट जाती है तो फिर जो पत्ते हैं तो कहाँ तक भरे रहेंगे। जिसकी जड़ कट गई तो पूरा वृक्ष सूख जाने वाला है। तो यहाँ गृहस्थी में भी संसार में रह करके संसार की जड़ काट दे
जी,
उनका संसार फलेगा फूलेगा नहीं, उसका संसार सूख जाएगा, उसका संसार
सूख जाएगा
और इसका विश्वास यहाँ आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अब मेरा संसार लंबा चलने वाला है, विश्वास आ जाएगा, प्रतीति आ जाएगी, खातरी हो जाएगी कि अब मेरा संसार है ही नहीं। पहले संसार तिरने की फिक्र होती है, चिंता होती है, क्या सबसे पहले परिभ्रमण की संसार तिरने की चिंता होती है, और जब आगे बढ़ता है तो मालूम पड़ता है कि अभी मेरा संसार रहने वाला है। संसार तो मेरो सुख गयो, फिकर गई मोहे तरनन, तिरने की मेरी फिकर
गई।
ये भूमिका ग्रस्त दशा में ही आ जाती है। मेरा बहन गाया कि नहीं गया
जी,
मेरा बहन नहीं गया, मेरे संसार तो सूख गया है
जी।
पहले तो मेरे को भी तिरने की फिक्र थी, अब वो फिक्र मेरी
गई
चली गई। उनको गुरु ऐसा मिल गया था, रविदास नाम के गुरु मिले थे
जी,
भक्त रविदास ऐसे गुरु मिले। उनको गुरु चरण की ऐसी लगी
जी,
उसका संसार सूख गया और तिरने की फिक्र
चली गई।
बाहर का चाहे जितना जाना हो तो भी उपयोग को स्थूल कहने में आता है
जी।
कितना भी शास्त्र ज्ञान हो अंग पूर्वक, ग्यारह अंग नौ पूर्व तक मिथ्या दृष्टि का ज्ञान हो सकता है। अभव्य का ग्यारह अंग होता है और मिथ्या दृष्टि का ग्यारह अंग नौ पूर्व का होता हो सकता है। बारह अंग में सौ पूर्व है, उसमें नौ पूर्व तक पढ़ लिया है, दस
का है,
उसको अपन सूक्ष्म उपयोग कैसे बोलेंगे? क्योंकि उसको ही बारह अंक का ज्ञान होता है।
अंतर्मुख होता है तब सूक्ष्म बोले, जब नहीं होता है तब
उसको बारह अंक का ज्ञान हो ही नहीं सकता।
मेरा प्रश्न यानी सौ विकल्प दशा में आ जाता है, जब वो विकल्प दशा में आ जाता है तब
कौन
जो ग्यारह अंक का चौदह फुट का पाठी है निर्विकल्प आनंद है तब तो सूक्ष्म उपयोग बराबर, अगर विकल्प दशा में आता है तब
तब भी उसकी परिणति तो नहीं छूटी ने, उसके निर्विकल्प और स्वविकल्प के बराबरी में स्थूल उपयोग हुआ
बराबर।
लेकिन मिथ्या दृष्टि जो स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकता है ऐसा स्थूल नहीं है।
मेरा प्रश्न पहले भी यही था,
ऐसा स्थूल नहीं है
सम्यक दृष्टि का,
क्योंकि वो फिर आ जाएगा। परिणति में तो ग्रहण किया ही है
जी।
उसकी ज्ञान परिणति में आत्मा है
जी।
तो इसका उपयोग मिथ्या दृष्टि जैसा स्थूल है वैसा स्थूल नहीं है ऐसा लेना। बाकी निर्विकल्प उपयोग और स्वविकल्प उपयोग में जो फर्क है वो तो फर्क है ही। क्या कहते हैं, बाहर में चाहे जितना जाना
जी
तो भी उपयोग को स्थूल कहने में आता है। स्थूल उपयोग है, आश्चर्य हो जाए दूसरे को क्या
जी
कितना ज्ञान है, समुद्र जैसा ज्ञान है इसका, तो ऐसा लगे। भगवान कहते हैं कि स्थूल उपयोग है, आत्मा को नहीं जाना उपयोग
स्थूल है।
क्योंकि अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं किया, क्या बाकी रह गया कि अपने स्वरूप को ग्रहण
नहीं किया,
नहीं ज्ञानी का वो भजन है कि तुम शास्त्र पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो, सत्संग करते हो, स्वरूप को ग्रहण करने का प्रयास है कि नहीं है वो देखो। अगर स्वरूप नहीं ग्रहण किया तो कुछ नहीं किया, अभी तो किसी का इतना अभ्यास होता ही नहीं। अभी जो बुद्धि वाले लोग हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कितने भी विद्वान हैं, कितने भी पंडित हो, तो ग्यारह अंक का जो शास्त्र पढ़ने वाला है उसका एक लाखवा हिस्सा नहीं है, कितना एक लाखवा हिस्सा भी नहीं है, हजारवा नहीं, उतना विस्तार वाला वो ज्ञान है ग्यारह अंक तो
जी।
फिर भी जो चैतन्य स्वरूप को ग्रहण नहीं करता है उसका उपयोग स्थूल है। स्थूल है मतलब इसका कोई वैल्यू
नहीं है,
मोक्ष मार्ग में नहीं है, मोक्ष मार्ग में इसका कोई स्थान है ही नहीं। आज वो स्मरण में रहा ग्यारह अंक का ज्ञान, कल विस्मरण हो जाएगा। और हमारा शास्त्र भी बोलता है कि परिभ्रमण करने वाला जीव ने यानी हमने हम भी परिभ्रमण कर रहे हैं। अनंत काल में 11 अंक का ज्ञान अनंत बार किया है लेकिन भूल गए, मुझे पता ही नहीं है। हम तो क्या क्या पढ़ा था कुछ पता
नहीं,
क्योंकि ये स्मृति है और स्मरण स्मृति विस्मृति के साथ जुड़ी हुई है। स्मृति वाला ज्ञान एक संयोग है जिसका वियोग हो जाएगा। जो संयोग और वियोग वाली चीज है वो आत्मा की मूल स्वभाव की स्वरूप की चीज नहीं है,
संयोग
तो पर चीज है, जो बाहर की चीज है वो आती है और जाती है। मेहमान है वो मेहमान है और घर के हैं वो घर के हैं। मेहमान का कितना भी आदर करे सत्कार करे, घर वाले को नहीं खिलाए ऐसा ऐसा बना के खिलाए फिर भी मेहमान है वो मेहमान है, और मेहमान भी जानता है कि मेरे घर में जितनी सुविधा मुझे नहीं मिलती है उतनी सुविधा इधर मिलती है, लेकिन अपनत्व होता नहीं है। हाँ अपनत्व होता है, अपने घर में अपनापन लगता है, इधर अपनत्व होता नहीं है। तो उसको सुहाता नहीं है, वो अपना घर जाना चाहता है, ज्यादा दिन रहना नहीं चाहता है। क्यों? तो जितना अपने घर में वो फ्री रहता है उतना मेहमान बन करके फ्री रह पाएगा नहीं। मर्यादा में रहना पड़ता है, पिंजर में रहता है, पिंजर में आता है, चाहे पिंजर लोहे का हो चाहे पिंजर सोने का हो, पिंजर तो पिंजर है। इसलिए मुक्त भाव में जो मस्ती है, मुक्ति में जो आनंद है, वो बंधन में है, स्वतंत्रता है बंधन। तो मुक्ति कब होती है? अंतर्मुख होने से मुक्ति होती है। बाहर जितना भी परिणाम जाता है वह बद्धता बंधता है, परब्रह्म के साथ उसका बंधन संबंध क्या होता है? आत्मा के परिणाम का परब्रह्म के साथ संबंध होता है। संबंध मैंने बहुत बढ़िया बंध होता है, अच्छा बंध होता है। ये संबंध, संबंध क्या चीज है? हमारे इन लोग गौरव को लेते हैं, अभिमान करते हैं कि हमारे बहुत बहुत संबंध है
जी,
हमारे को बहुत बहुत संबंध है। तो ज्ञानी जानते हैं कि तुमको बहुत बहुत बंधन है, कि इसकी नजर में भी ठीक रहना, इसकी नजर में भी ठीक रहना, इसकी नजर में भी ठीक रहना, इसकी नजर में भी ठीक रहना। तो तुमको तो दूसरी नजर के अनुसार चलना पड़ेगा, तुम्हारी खुद की तो कोई स्वतंत्रता रहेगी नहीं। ज्ञानी स्वतंत्र है, करना फकीरी क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी, ज्ञानी ऐसे रहता है। दूसरे को तो निंदा स्तुति की पड़ी होती है, अरे मेरी निंदा होती है, मेरी मेरी प्रशंसा होती है, मेरी निंदा होती है, मेरी प्रशंसा होती है। तो निंदा नहीं हो और प्रशंसा बनी रहे ऐसा करने को जाएगा, फिर होगा तो कर्म के उदय अनुसार, क्योंकि वो तो यश कर्म का उदय होता है, तो प्रशंसा करते हैं दुखी लोगों के लिए। अपयश का उदय होता है तो ज्ञानी को भी लोग नहीं सुनते, मारते भी है, ऐसा भी बनते हैं, मुनियों को भी उपसर्ग करते हैं। तो बात तो अलग है, लेकिन जिसको भीतर में अंतर्मुक्ता आई उसको स्वतंत्रता नहीं है, तो स्वतंत्र हो गया। बाहर का चाहे जितना भी उपयोग स्थूल उपयोग हो स्थूल होता है, क्योंकि अपने को ग्रहण नहीं किया। स्व सन्मुख अपने और की दिशा में वो मोड़ नहीं लिया क्या
जी?
परिणाम जो इधर जाते थे बाहर की ओर, तो मुड़ करके इधर नहीं आए, इधर ही लगे रहे। तुम्हारा संबंध किया वो बंधन हुआ, यहाँ से छूट करके इधर आया तो बंधन टूटा और मुक्ति हुई। मोक्ष मार्ग है अंतर्मुख होना, वही मोक्ष मार्ग है। और कोई दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है। न शास्त्र पढ़ना मोक्ष मार्ग है, न भक्ति पूजा करना मोक्ष मार्ग है, न दयादान जात यात्रा करना मोक्ष मार्ग है, न माला फेरना मोक्ष मार्ग है, और न वृक्षारोपण करना मोक्ष मार्ग है। उपयोग अंदर में जाए वही मोक्ष मार्ग है, पर अंदर जाने से बाहर की परिस्थिति छूट जाती है तो उसको बोलते हैं त्याग कर दिया
जी,
बाकी सब छूट गया। क्या वो उपयोग अंदर में रह गया? तो उपयोग बाहर रहा तो वो त्याग है, वो आडंबर है, त्याग वास्तव में है ही नहीं। सन्मुख अपने और की दिशा का मूल नहीं लिया, स्वभाव को नहीं पहचाना, मूल बात कहाँ आती है महसूस की? स्वभाव को नहीं पहचाना, क्यों मोड़ा नहीं, यहाँ से मोड़ करके अंदर क्यों नहीं आए कि पहचाना नहीं। अगर अपने स्वरूप को पहचानता
जी
तो उसका आकर्षण हो जाता। बाहर का आकर्षण क्यों है? सुख के कारण से। अंदर का आकर्षण ज्ञानियों को क्यों है? सुख के कारण है। जीव के परिणाम सुख के कारण से ही बनते हैं, दौड़ते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं। पर उतना वो स्वतः ऑटोमेटिक बनता है कि चाहे नहीं चाहे सुख का निश्चय हुआ, परिणाम मान लग जाएंगे बिना सोचे। तो स्वभाव को नहीं पहचाना, स्वभाव में जो अनंत सुख भरा है, स्वरूप में जो अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत आनंद भरा है, उसकी पहचान आने से परिणाम वहां लगने लगते हैं। जब तक पहचान नहीं आती है तब तक परिणाम में जो सुख बुद्धि है वहीं परिणाम लगे रहेंगे। जहां भी सुख का निश्चय किया है, चाहे सुख मिलता है नहीं मिलता है अलग बात है, दूसरी बात है, परिणाम वहीं लगेंगे, वो बात जरूर है। अच्छा, सुख आत्मा में है ऐसा हम सत्संग में, स्वाध्याय में, शास्त्र में से जानकारी करते हैं
जी।
जानकारी करना एक बात है, पहचानना दूसरी बात है। जैसे हम कोई व्यक्ति को जानते हैं, कोई चीज को जानते हैं कि वो खड़ा रहा है, लेकिन पहचान होना दूसरी बात है, यह पहचान की बात है। आत्मा की पहचान के बिना परिणाम की दिशा जो परसन्मुख है वो स्वसन्मुख होने वाली
नहीं
है। यहाँ से आकर्षण छूटेगा नहीं और भीतर का आकर्षण हो जाएगा। अभी वर्तमान में मेरे प्रदेश प्रदेश में अनंत अनंत सुख भरा है
जी,
तो पहचान से विश्वास आता है, जानने से विश्वास नहीं आता है। जानने से विश्वास, जानते हैं जो शास्त्र पढ़ते हो तो जानते हैं कि सुख आत्मा में है, बहुत अनंत सुख है, लेकिन क्या विश्वास तो उधर है। विश्वास तो पंचेंद्रिय के विषय में सुख है ऐसा विश्वास पड़ा है, वो विश्वास टूटे पर स्वरूप में सुख है वो विश्वास जमे, तब तो हुई पहचान, वरना पहचान हुई
नहीं।
स्वभाव को पहचाना नहीं, अतः बाहर रहा उपयोग को, बाहर में रहने वाले उपयोग को स्थूल कहने में आता है। इसी कारण से स्थूल है भी स्थूल, और स्थूल है उसको स्थूल कहने में आता है।
Thank you.
परमार्थ मार्ग में विस्तार वाला बाह्य ज्ञान नु मूल्य नहीं परंतु जी ज्ञान में स्वरूप अस्तित्व ग्रहण थाय तेनुज मूल्य छे। तेथी शास्त्र अध्ययन करवा वाला मुमुक्षु अंतर्मुख थवा प्रति होवु घटे छे। अने सत्संग स्वाध्याय द्वारा अंतर्मुख थवानो उपाय શોધવો ઘટે છે।
સુખા